अध्याय 19 मसीही परमेश्वर को प्रकट करें। परमेश्वर का यह एकमात्र अभिप्राय है कि अपने लोगों के द्वारा वो अपने राज के सिद्धांतों को प्रकट करें। इन सिद्धांतों को वे अपने जीवन तथा चरित्र से प्रकट करें। इस उद्देश्य से वो उन्हें संसार के रीत दस्तूरों से अलग रखना चाहता है। वो उनको अपने निकट लाना चाहता है ताकि उन पर अपनी इच्छा प्रकट कर सकें। परमेश्वर आज अपने लोगों द्वारा वही उद्देश्य पूरा करना चाहता है जिसे उसने इसराइलियों द्वारा पूरा करना चाहा था जब वो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था। परमेश्वर की भलाई, दया, न्याय तथा प्यार को कलीसिया में प्रदर्शित देखकर संसार के लोग उसके चरित्र का नमूना प्राप्त करेंगे। और जब परमेश्वर की व्यवस्था इस प्रकार जीवन में प्रदर्शित की जाएगी तो संसार भी पृथ्वी के अन्य लोगों की अपेक्षा उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करेगा जो परमेश्वर को प्यार करते, उसकी सेवा करते और उसका भय मानते हैं। परमेश्वर की आंख अपने लोगों में से प्रत्येक के ऊपर है। प्रत्येक के लिए उसके पास एक योजना है। उसका इरादा है कि जो उसके पवित्र सिद्धांतों का पालन करते हैं वे एक पृथक लोग बने। प्रेरणा के आत्मा द्वारा मूसा के हाथ से लिखे गए वाक्य जिस प्रकार प्राचीन इसराइल के लिए योग्य थे उस प्रकार आज वे परमेश्वर के लोगों के लिए उपयुक्त हैं। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहर। व्यवस्था विवरण 7:6 मसीह के से चरित्र का निर्माण। मसीह के धर्म को ग्रहण करने वाले चाल चलने की अवन्नति नहीं होती। वो स्वाद को शुद्ध, विवेक को पवित्र और विचारों को स्वच्छ और सुमन्नत करता है और उन्हें मसीह की अधीनता में लाता है। अपनी संतान के लिए परमेश्वर का आदर्श मानव के उच्चतम से भी ऊंचा है। उसने अपनी पवित्र व्यवस्था में अपने चरित्र की एक प्रतिलिपि दी है। मसीही चरित्र का आदर्श मसीह सदृश्यता है। हमारे सामने निरंतर उन्नति का द्वार खुला है। हमें एक उद्देश्य प्राप्त करना है, एक स्तर तक पहुंचना है जिनमें प्रत्येक भली तथा शुद्ध, शिष्ट, उन्नत वस्तु सम्मिलित है। चरित्र की सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त आगे की ओर तथा ऊपर की ओर लगातार परिश्रम व निरंतर प्रगति का होना परमावश्यक है। जो कुछ हमारी आदतें हमें बना डालती हैं वहीं हम अब और अनंत काल तक रहेंगे। जो उचित आदतों की रचना करते हैं और प्रत्येक कर्तव्य का विश्वस्तता से पालन करते हैं वे चमकदार ज्योति की भांति होंगे जो दूसरों के मार्ग पर तेज किरणें डालती हैं। परंतु यदि अविश्वास की आदतें डाली जाएं, यदि सुस्ती, असावधानी तथा उपेक्षा की आदतों को दृढ़ होने दिया जाए तो इस जीवन की आशाओं के ऊपर एक काला मेघ जो आधी रात से भी अंधेरा है छा जाएगा और किसी भी व्यक्ति को भविष्य के जीवन से सदा वंचित कर देगा। डेफिनेशन है वो जो अनंत जीवन की बातों की ओर ध्यान देता है। सत्य के आत्मा द्वार अगुवाई की जाकर वो सब सच्चाई में अगुवाई की जाएगी। उसको संसार न तो प्यार करेगा, न उसका आदर होगा, न उसकी प्रशंसा की जाएगी, परंतु स्वर्ग को दृष्टि में वो बहुमूल्य ठहरेगा। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। 1 यूहन्ना 3:1। आज साहसपूर्वक जीवन व्यतीत कीजिए। परमेश्वर के सत्य को आप जब हृदय में ग्रहण करते हैं तब वो आपको त्राण के लिए बुद्धिमान बनाने योग्य है। उस पर विश्वास करने और उसकी आज्ञा अनुसार चलने से आपको आज के कर्तव्य कर्म और परीक्षाओं के लिए पर्याप्त परिमाण में अनुग्रह प्राप्त होगा। आपको कल के लिए अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है। आपको महसूस करना चाहिए कि आपको केवल आज ही से प्रयोजन है। आज के लिए विजय प्राप्त कीजिए। आज के लिए स्वार्थ का त्याग कीजिए। आज के लिए जागते और प्रार्थना करते रहिए। आज के लिए परमेश्वर में विजय हासिल कीजिए। हमारी परिस्थितियां और वातावरण, हमारे अगल बगल में रोजाना होने वाले परिवर्तन और परमेश्वर का लिखा हुआ वचन जो सारी वस्तुओं को परखता और प्रमाणित करता है, ये दिन प्रतिदिन हमें कर्तव्य कर्म सिखाने के लिए काफी हैं। आप अपना मन उन विचारों की ओर न दौड़ाएं जिनसे आपको कोई लाभ नहीं है। आपको प्रतिदिन धर्मशास्त्र में ढूंढना चाहिए और दैनिक जीवन में कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जो इस समय दुखदायी तो प्रतीत होंगे, परंतु किसी न किसी को उन्हें अवश्य करना है। बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द के घोर अधर्म, धर्मत्याग और दुर्बलताओं पर ही अपनी दृष्टि जमाए रहते हैं और उन्हीं बातों के ऊपर बातचीत करते हैं, जिसके कारण उनके दिल शोक और संदेह से भर जाते हैं। वे अपने मन में कुख्यात धोखेबाज शैतान की चतुर करतूतों को सर्वोच्च स्थान देते हैं और अपने अनुभव के निराशाजनक बातों पर सोच विचार करते रहते हैं। इस समय ऐसा मालूम होता है कि वे अपने स्वर्गीय पिता की सामर्थ और उसके अद्वितीय प्रेम भूल जाते हैं। ये सब उस प्रकार होते हैं जैसा शैतान चाहता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम और उसकी शक्ति की कम चर्चा करके धार्मिकता के शत्रु को शक्तिशाली समझते हैं, तो हम भारी भूल करते हैं। हमें मसीह की शक्ति की चर्चा करनी चाहिए। हम अपने को शैतान के चंगुल से छुड़ाने में अत्यंत निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर ने छुटकारे का एक मार्ग नियुक्त किया है। परम प्रधान के पुत्र को सामर्थ है कि हमारे संतों युद्ध लड़ें, और उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। रोमियो 8:36। निरंतर अपनी निर्बलता तथा पतित अवस्था में चिंतामग्न रहने से, शैतान की सामर्थ पर खेद प्रकट करने से हमें कोई आत्मिक बल प्राप्त नहीं होता है। यह विशाल सत्य हमारे मन व हृदय में एक जीवित सिद्धांत के रूप में स्थापित होना चाहिए। बलिदान जो हमारे लिए चढ़ाया गया इतना प्रभावशाली है कि परमेश्वर उनको, जो उसके पास उसके वचन में वर्णन की गई शर्तों को पूरी करते हुए आते हैं, उनको बचा सकता और बचाता है। हमारा काम है कि अपनी इच्छा पर निछावर कर दें, तब प्रायश्चित के लोहू द्वारा हम ईश्वरीय प्रकृति के भागी हो जाते हैं। मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं, और हमें विश्वास हो जाता है कि परमेश्वर हमको ऐसा ही प्यार करता है जैसा वह अपने पुत्र को प्यार करता है। हम मसीह के साथ एक हैं। हम उसी जगह जाते हैं जहां मसीह ले चलता है। हमारे मार्ग पर शैतान जिस अंधेरी परछाई को डालता है, उसको दूर करने की शक्ति मसीह में है, और अंधकार और निराशा के साथ में उसकी महिमा का प्रकाश हमारे हृदयों में चमकने लगता है। भाइयों और बहनों, देखने ही से हम परिवर्तित होते हैं। जब हम परमेश्वर और अपने त्राणकर्ता मसीह के प्यार पर सोच विचार करते हैं, ईश्वरीय चरित्र की सिद्धता पर ध्यान करते हैं और विश्वास द्वारा मसीह की धार्मिकता को अपनाते हैं, तब हम उसी स्वरूप में बदल जाते हैं। तो आइए हम निकम्मी तस्वीरों को एकत्र करके, अर्थात पापों, भ्रष्टाचारों, निराशाओं को, जो शैतान की शक्ति के प्रमाण हैं, उन्हें अपनी स्मरण शक्ति की दीवालों पर न लटकाएं और न उन पर चर्चा करें तथा विलाप करें। ऐसा न हो कि हमारी आत्माएं स्वयं निराशा से भर जाएं। निराश व्यक्ति अंधकार का घर है, जो न केवल स्वयं परमेश्वर के प्रकाश का तिरस्कार करता है, परंतु औरों को भी उससे अलग रखता है। शैतान मानव प्राणियों को विश्वासहीन और निरुत्साह बनाकर अपनी विजय के चित्रों का प्रभाव देखकर अत्यंत हर्षित होता है। निस्वार्थ जीवन से परमेश्वर को प्रकट कीजिए।
स्वार्थ ही वह पाप है जिसमें लोग अत्यधिक लिप्त रहते हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है और छूत लगने वाली आध्यात्मिक बीमारियों को उत्पन्न करता है। परमेश्वर की ओर फिरने का कोई और मार्ग नहीं है सिवाय आत्मत्याग के। अपनी ओर से हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर की सहायता से हम दूसरों की भलाई कर सकते हैं और इस प्रकार स्वार्थ की बुराई को परित्याग कर सकते हैं। निस्वार्थ उपयोगी जीवन में अपना सर्वस्व ईश्वर के नाम पर अर्पण करने की इच्छा प्रकट करने के लिए अन्य जातियों के देश में जाने की जरूरत नहीं। ये तो हमें अपने कौटुंबिक वृत्त में, अपनी कलीसिया में, उनके बीच जिनसे हमारा व्यवहार तथा लेन देन होता है, कर दिखलाना चाहिए। सामान्य जीवन जहां स्वार्थ का इनकार करना चाहिए और काबू में रखना चाहिए। पौलुस कह सकता था, मैं रोज मरता हूं। जीवन के छोटे छोटे कारोबारों में हमें स्वयं को भूल जाना चाहिए। अनेकों में निश्चित रूप में दूसरों के लिए प्यार की कमी है। ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करने की अपेक्षा अपने ही भोग विलास की खोज में रहते हैं। स्वर्ग में स्वार्थ के बारे में कोई न सोचेगा, न अपने ही सुख चैन की तलाश में रहेगा, परंतु सब के सब सच्चे प्रेम से अपने अपने चारों ओर के स्वर्गीय प्राणियों के सुख की चिंता करेंगे। यदि हम नई पृथ्वी पर स्वर्गीय समाज का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें यहां स्वर्गीय सिद्धांतों से शामिल होना चाहिए। मुझे दिखलाया गया कि हमारे दरमियान आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ तुलना की जाती है और नाशमान मनुष्य को अपना नमूना बनाया जाता है, जबकि एक सच्चा और निर्दोष नमूना मौजूद है। हमें अपने को ना तो संसार के नाप से, न ही मनुष्यों की राय से, न सच्चाई को ग्रहण करने से पूर्व की स्थिति से नापना चाहिए, परंतु संसार से मसीह के अनुयायी होने के इकरार करने के समय से यदि हम अपनी प्रगति चाल में निरंतर आगे और ऊपर की ओर बढ़ते रहते तो हम विश्वास तथा स्थिति की जिस उच्च शिखर को पहुंचते, हमारे वर्तमान विश्वास तथा स्थिति का मुकाबला उसी से करना चाहिए। किसी और तुलना में आत्मधोखा अवश्य होगा। यदि परमेश्वर के लोगों का नैतिक आचरण तथा आध्यात्मिक स्थिति उन आशीषों, शुभावसरों तथा प्रकाश के अनुकूल जो उन्हें प्रदान किए गए हैं नहीं है, तो उससे प्रकट होता है कि वे तुला में तौले गए हैं और स्वर्गदूत सूचित करते हैं कि वे कम उतरे हैं। अक्षमय पाप। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना किसे कहते हैं? पवित्र आत्मा के काम को जानबूझकर शैतान का काम बतलाना ही पाप है। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि कोई परमेश्वर की आत्मा के कार्य का साक्षी है, उनके पास विश्वास दिलाने वाला प्रमाण है कि वह कार्य धर्मशास्त्र के अनुकूल हो और पवित्र आत्मा उसकी आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है उसके संग साक्षी देता है, तत्पश्चात वह प्रलोभन, अभिमान, स्वावलंबन अथवा किसी बुरी आदत के अधिकार में पड़ जाता है और उसके पवित्र आत्मा के ईश्वरीय गुणों को ठुकराकर वह घोषित करता है कि जिस कार्य को मैंने पहले स्वीकार किया था कि वह पवित्र आत्मा का कार्य था, वह तो शैतान का कार्य है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मानव हृदय पर कार्य करता है और जब मनुष्य जानबूझकर पवित्र आत्मा को अस्वीकार करते हैं और उसे शैतान का कार्य घोषित करते हैं तो वे उस मार्ग को बंद कर देते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर उनसे वार्तालाप करता है। उस प्रमाण का जो परमेश्वर उन्हें देने को प्रसन्न है इनकार करने से वे उस प्रकाश को बुझा देते हैं जो उनके हृदयों में चमक रही थी और फलस्वरूप वे इस प्रकार अंधकार में पड़ जाते हैं। मसीह के शब्दों की पुष्टि इस प्रकार होती है, इस कारण वह उजियाला जो तुझमें है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। मत्ती 6:23। जो लोग इस पाप को करते हैं कुछ समय तक वे परमेश्वर की संतान जैसी दिखाई देती हैं, परंतु जब परिस्थितियां उनके चरित्र के विकास के लिए उपस्थित होती हैं और उनकी आत्मा की वास्तविक स्थिति बतलाती है कि वे किस प्रकार के हैं, उस समय प्रत्यक्ष हो जाएगा कि वे शत्रु की भूमि में उसके काले झंडे के नीचे खड़े पाए जाएंगे। मसीह का इकरार अथवा इनकार।
समाज में, परिवारों में अथवा जीवन के किसी भी लोगों से हम अपने प्रभु का इकरार कर सकते हैं और कई तरह से उनको नकार भी सकते हैं। हम उसको अपनी बातों से, दूसरों की बुराई करने से, मूर्खता की बातों से, हंसी ठट्टा करने से, निकम्मे अथवा कठोर शब्द बोलने से, सत्य को दबाकर उसके विरुद्ध बात करने से उसको इनकार कर सकते हैं। हम अपनी बातों द्वारा प्रकट कर सकते हैं कि मसीह हमारे मन में बास नहीं करता है। जीवन के कर्तव्यों और भारों को उठाने से मुंह मोड़ने द्वारा, जिन्हें किसी और को अवश्य उठाना होगा, यदि हम न करेंगे और भोग विलास प्रेमी होने द्वारा भी हम उनका इनकार कर सकते हैं। हम वस्त्र के अभिमान और संसार की रीति पर चलने द्वारा, अशिष्ट व्यवहार द्वारा उनका इनकार कर सकते हैं। हम अपनी ही अनुभूति को प्रिय समझने और स्वयं का समर्थन करने द्वारा उनका इनकार कर सकते हैं। मन को प्रेम में डूबी भावुकता के भाग की ओर ले जाने और अपने तथा कथित दुर्भाग्य और परीक्षाओं में डूबे रहने से हम उनका इनकार कर सकते हैं। जब तक मसीह का मन और आत्मा मन में बास नहीं करेगा, तब तक संसार के सामने कोई उसकी वास्तविक रूप से गवाही नहीं दे सकता है। जो हमारे पास नहीं है उसको हम दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। हृदय अनुग्रह और सत्य का असली और प्रत्यक्ष प्रकटीकरण
बातचीत और व्यवहार में होना अवश्य है। यदि हृदय पवित्र, सहिष्णु और नम्र है तो फल भी प्रत्यक्ष होंगे और मसीह के लिए एक प्रभावशाली साक्षी सिद्ध होंगे।